कोई जवाब नहीं। परी ने आगे कहा, अब मुझे व्यापार के लिए मछली मिलेगी ना? दाम दूंगा, अच्छा दाम दोगे तो ले सकोगे। यही जवाब मिलना चाहिए था, यही जवाब करुत्मा ने पहली बार दिया था, पर इस बार उसने कोई जवाब नहीं दिया। उस दिन इस तरह की बातचीत की सिलसिले में दोनों खूब जोर से हंसे थे। परी ने सोचा भी होगा कि वह हंसी फिर दोहराई जाएगी, लेकिन आज ऐसा नहीं हुआ। करुत्मा एकदम चुप थी। परी ने पूछा, करुत्मा तुम बोलती क्यों नहीं हो? क्या मुझसे कुट्टी कर ली है? परी को लगा कि वह भीतर ही भीतर रो रही है। उसने पूछा, रो रही हो करुत्मा? उसने आगे कहा, मेरा आना पसंद नहीं है तो मैं जाता हूँ। इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। तब रूंधे हुए कंठ से परी कुट्टी ने पूछा, क्या मैं जाऊं करुत्मा? मोतलाली, तुम एक विधर्मी हो। करुत्मा ने जवाब दिया मानो परी का आखिरी सवाल उसके हृदय में कहीं लग गया हो। परी कुट्टी की समझ में बात नहीं आई। उसने पूछा, इससे क्या? इसका कोई जवाब नहीं था। करुत्मा के मन में भी यह सवाल उठा, विधर्मी है तो क्या? झट से उसके मुंह से एक वाक निकला, डेरे पर काम के लिए आने वाली मजदूरिनों की छाती की ओर जाकर नजर गड़ाओ। परी को लगा कि करुत्मा ने उस पर भारी आरोप लगाया है। उसको लगा कि करुत्मा सोचती है कि काम के लिए आने वाली मजदूरिनों के साथ उसका अनुचित संबंध है और इसलिए वह नाराज है। उसकी समझ में नहीं आया कि वह कैसे अपनी निर्दोषिता का प्रमाण दे। उसने किसी को भी उस नज़र से नहीं देखा था। उसने सच्चाई से कहा, अल्लाह की कसम मैंने किसी को भी उस नज़र से नहीं देखा है। परी कुट्टी अच्छा आदमी है, यह साबित हो जाता तो करुत्मा को बड़ी खुशी होती। इसमें कोई संदेह नहीं था, लेकिन वह अपने लिए परी कुट्टी से यह नहीं चाहती थी कि वह दूसरी औरतों को न देखे। वह क्या चाहती थी या वह उसे कैसे कहे, यह वह खुद नहीं जानती थी। उसे कैसा जीवन बिताना है यह भारी तत्व ज्ञान सारा का सारा सुनाना पड़ेगा और यह काम उससे नहीं होगा। इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। निःशब्दता में काफी समय बीत गया, किसी ने कुछ नहीं कहा। उस चुप्पी की अवधि बढ़ जाएगी, मानो इसी डर से करुत्मा ने कहा, अम्मा अब आएगी। इससे क्या? डर कर उसने कहा, बाप रे बाप, यह गलत है, यह अपराध है। तुम भीतर हो, मैं बाहर हूँ, फिर क्या? यह भी उसे समझाना होगा। कैसे? कहना शुरू करती तो कितना कहना पड़ता। परी ने पूछा, करुत्मा तुम उससे प्रेम नहीं करती? करुत्मा ने झट से जवाब दिया, करती हूँ। परी कुट्टी ने आवेश के साथ पूछा, तब तुम बाहर क्यों नहीं आती? मैं नहीं आती, हंसाऊंगा नहीं, जरा देख कर चला जाऊंगा। निस्सहाय भाव से करुत्मा ने इतना ही कहा, नहीं नहीं बाप रे बाप, तो मैं जाता हूँ। जवाब के तौर पर भीतर से आवाज आई, मैं सदा सर्वदा प्रेम करती रहूंगी। इससे बढ़कर कौन सी प्रतिज्ञा चाहिए थी? परी वहां से चला गया। उसके चले जाने पर करुत्मा को लगा कि जो कहना चाहिए था सो तो कहा नहीं, और जो नहीं कहना चाहिए वह वही कह दिया। उस रात को करुत्मा ने माँ बाप दोनों को रोशनी जलाकर रुपया गिनकर रखते देखा। अब भी रुपया कम था, तो भी चेम्पन को तसल्ली थी। उसने कहा, औसेप या किसी और गला काटने वाले के पल्ले पड़े बिना ही इतना तो हो गया। चक्की ने भी सहमत प्रकट की, मछुआरों को धोखा देने के लिए जेब में रुपये डालकर घूमने वालों से रुपया लिया होता तो तब तो नाव न रहेगी, न जाल, न लगाया हुआ रुपया ही मिलेगा। औसेप और गोविंदन हाल में ही पूछ रहे थे कि कर्जा चाहिए क्या? चेम्पन ने जवाब में ना कह दिया था, उनसे लेने पर कर्जा कभी चुकता ही नहीं। इतना ही नहीं, नाव और जाल भी जल्दी ही उन्हीं को हो जाता। गरीब मछुआरे के साथ ऐसा ही होता आया है, अभी रुपया कम है तो उसका क्या उपाय है? चेम्पन ने कहा, छोटा मोतलाली ही बाकी रुपया क्यों नहीं दे देता? जीवन में पहली बार करुतमा के मन में माँ बाप के प्रति घृणा उत्पन्न हुई। माँ ने इस प्रस्ताव का विरोध क्यों नहीं किया, इस विचार ने उसे और भी परेशान कर दिया। परी के घर में इसके बाद मछली सुखा सुखा कर बोरों में भरने का काम बड़ी तेजी से होने लगा। इसका रहस्य करुत्तमा को मालूम था। थोड़े ही दिनों में वह काफ़ी होशियार हो गई थी। जीवन में अभिवृद्धि लाने वाले परिवर्तन की खुशी में चक्की ने करुत्तमा से कहा, बेटी हमारी नाव और जाल के आने का समय आ गया। करुत्तमा ने कुछ नहीं कहा। उस खुशी में वह भागीदार नहीं हो सकी। उसकी ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। चक्की ने कहा, समुद्र माता ने कृपा की है। करुत्तमा के मन में जो गुस्सा भरा था वह प्रकट हो गया। उसने कहा, लोगों को धोखा देने से समुद्र माता नाराज नहीं होंगी क्या? चक्की ने करुत्तमा की ओर गौर से देखा। करुत्तमा विचलित नहीं हुई। उसे और भी पूछना था। उस बेचारे को धोखा देकर नाव और जाल नहीं लाना चाहिए अम्मा, यह तो अन्याय है। क्या कह रही हो री कि धोखा दिया है? करुत्तमा ने हिम्मत के साथ कहा, हाँ। किसने? करुत्तमा की चुप्पी ही इसका जवाब था। चक्की ने कहा, औसेप से कर्जा लिया जाता तो नाव और जाल उसी के हो जाते। नहीं अम्मा, औसेप को सिर्फ सूद के साथ उसका रुपया लौटा देना पड़ता। यह नहीं लौटाना है क्या? करुत्तमा ने चक्की से सीधे ढंग से पूछा। यह लौटाने के लिए लिया गया है क्या? चक्की ने कहा कि परी से सूखी मछली लेने में कोई धोखेबाजी नहीं थी। चैम्पन ने तो सिर्फ पूछा था, जोर नहीं दिया था, झूठ भी नहीं बोला था, न धोखा ही दिया था। उसका रुपया जरूर लौटाया जाएगा। करुत्तमा ने पूछा, आधी रात के समय बोरी उठवा कर रखे जाते हैं, यह लौटा देने के लिए है? ऐसा है तो दिन के समय लाने में क्या हर्ज था? ऐसे ही कामों से समुद्र में तूफान उठता है। करुत्तमा की अंतिम बात जरा ज़्यादा हो गई। चक्की को गुस्सा आ गया। उसने पूछा, तू क्या कहती हैरी, तेरे बाप ने चोरी की है? करुत्तमा चुप रही। माँ के अधिकारपूर्ण स्वर में चक्की ने आगे कहा, वह विधर्मी छोकरा तेरा कौन हैरी? तुझे क्यों इतना दर्द हो रहा है? करुत्तमा कहना चाहती थी कि वह उसका कोई नहीं है, लेकिन उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। उसे लगा कि वह क्यों कहे कि परी उसका कोई नहीं है। क्या सचमुच यह उसका कोई नहीं है? उस समय उसे लगा कि परी वास्तव में सब कुछ है। चक्की ने अपना सवाल दोहराते हुए कहा, बाप रे बाप, लगता है कि लड़की समुद्र तट का सर्वनाश कर बैठेगी। करुत्तमा ने दृढ़ता के साथ माँ का विरोध किया। मैं अपनी मर्यादा छोड़ने वाली नहीं हूँ, फिर तुझे उसके लिए क्यों इतना दर्द होता है? इस हिसाब से तू उसे यहाँ से अपना डेरा डंडा सब उठाकर चल देना होगा। चक्की ने बेटी को फटकार कर खूब डांटा। करुत्तमा चुपचाप सुनती रही, उसे जरा भी नहीं अखरा। चक्की उसी तरह बोलती गई। जब उसकी डांट फटकार सीमा पार करने लगी, तब करुत्तमा ने माँ से पूछा, क्या उसने बप्पा पर विश्वास करके ही पैसा दिया है? नहीं तो फिर किस पर? एकाएक चक्की को याद आया कि करुत्तमा ने उससे रुपया मांगा था, और शायद वही बात याद करके वह पूछ रही है। उसने झल्ला कर कहा, क्या तेरी मांगने से दिया है? करुत्तमा यह नहीं कह सकती थी कि उसी के मांगने से परी ने रुपया दिया है, लेकिन वह जानती थी कि परी उसे प्यार करता है। उसने कहा, मुझसे कुछ मत कहलवाओ अम्मा। हूँ, क्या कहलवाना है परी? जरा रुक कर चक्की ने फिर कहा, तू यही कहना चाहती है कि मैं ही उसके पास नाचती हुई दौड़ी गई रुपया मांगने के लिए? अम्मा, मुझे इतना उपदेश देकर उससे रुपया क्यों लिया? अब उसका कर्जदार होकर आगे कुछ कहने में वह असमर्थ हो गई। उसका गला रुंध गया। चक्की का भी दिमाग जरा ठिकाने आ गया। करुत्तमा के कथन में तथ्य था। थोड़ी देर के लिए चक्की को भी बुरा लगा। उसे लगा कि कुछ गलती हो गई है और खतरे की ओर कदम बढ़ा दिया गया है। उसने पूछा, क्या है बेटी, क्या हो गया? करुत्तमा रोती रही, क्या वह यहाँ आया था बिटिया? करुत्तमा ने एक भारी झूठ बोल दिया, नहीं। तब क्या है बिटिया, अगर आवे तो मुझे क्या करना चाहिए अम्मा? चक्की ने अपने को निरपराध साबित करना चाहा। उसका तर्क था कि यह नहीं सोचा गया था। परी से सहायता मांगी और उसने सहायता दी। लौटाने के ख्याल से ही उससे रुपया लिया गया है, तो भी करुत्मा का डर ठीक था, परी बलचरल नहीं था। इसका चक्की को पूरा भरोसा था, फिर भी उसकी उम्र तो कम ही थी। चक्की का मन एकाएक अशांत हो गया। उस समय उसे लगा कि परी से रुपया नहीं लिया गया होता तो अच्छा होता, लेकिन चिंपन को यह सब कहाँ मालूम था। उस दिन भी करुत्मा की शादी की बात को लेकर चक्की ने पति को तंग किया। उसने जोर देकर कहा कि बेलायुधन से बातें करके देखना चाहिए, पहले यही काम होना चाहिए, नाव और जाल लेने के बारे में बाद में सोचना ठीक होगा। लेकिन चिंपन इसके लिए तैयार नहीं था। उससे सब कुछ खोल कर कैसे कहे, उसने गुस्सा प्रकट करते हुए कहा, अब तक तुम्हारे जाल और नाव के लिए पैसा इकट्ठा करने के विचार से मैं टोकरियां भर भर कर बेचने जाया करती थी, आगे इस आमदनी की आशा मत करना। चिंपन ने अलक्ष्य भाव से चक्की की ओर देखकर कहा, बिना सोचे विचारे ही तू क्या बोल रही है। चक्की ने चिढ़ कर कहा, मैं ठीक ही बोल रही हूँ। क्या? मुझे अपनी बेटी की रक्षा करनी है। माने? उसकी अब उम्र हो गई है, उसे घर पर अकेली छोड़कर कहीं जाने का मेरा मन नहीं है, नहीं तो बेटी की शादी करा दो। चिंपन चुप रहा, मानो उसकी समझ में बात आ गई। चक्की बेचने जाने का काम नहीं करेगी तो बड़ा घाटा होगा, यह निश्चित था। उसने पूछा, क्यों री, कोई गड़बड़ हो गई है? नहीं, लेकिन हो जाए तो? सावधान रहने की जरूरत तो थी ही, लेकिन चिंपन को पूरा भरोसा था कि करुत्मा सुशील है, वो छिंखल नहीं है, अकेली रह जाने पर भी वह कोई गलती नहीं करेगी। चक्की ने पूछा, गलती करने के लिए कितना समय चाहिए? चिंपन ने जवाब नहीं दिया। अगले दिन चक्की पूरब नहीं गई, चिंपन ने भी जोर नहीं दिया। उस रात को भी सूखी मछलियां लाने की बात थी, लेकिन इस बार चक्की ने विरोध किया, हमें वह नहीं चाहिए। चिंपन ने पूछा, क्यों? उस लड़के को क्यों धोखा दे रहे हो? किसने कहा है कि धोखा दे रहा हूँ? नहीं तो क्या उसका रुपया लौटा दोगे? चिंपन ने हाँ कह दिया। करुत्तम्मा को लगा कि परी को बता देना चाहिए कि रुपया वापस नहीं मिलेगा। वह गुप्त रूप से यह बात उसे बता देने के मौके की ताक में रही, लेकिन मौका नहीं मिला। रात को परी कुछ बोरे ढोकर लाया और बिना किसी संकोच के चिंपन ने सब उठाकर घर में रख लिए। परी से यह भी नहीं कहा कि कब उसका रुपया लौटा दोगा। करुत्तम्मा को लगा कि उसमें बाप के सामने भी बोलने की हिम्मत है। उसने माँ को ही इसमें ज़्यादा कसूरवार समझा। करुत्तम्मा को लगा कि सब दिन के लिए झुका देने वाला भार उठा लिया गया है। भाग तीन। चिंपन के पास पूरे रुपये जमा हो गए। वह रुपया लेकर नाव और जाल खरीदने चला गया। समुद्र तट पर यह चर्चा का विषय हो गया। किसी ने कहा कि चिंपन को कोई निधि मिल गई है। एक दिन जब वह समुद्र तट पर गया तो उसे पत्थर के टुकड़े जैसी कोई चीज मिली थी, जो वास्तव में सोने का एक ढेला था। दूसरों ने असली बात का समर्थन किया कि उसने बड़ी होशियारी से बचा बचा कर रुपया जमा किया है, लेकिन यह बात सबों के विश्वास करने योग्य नहीं थी। उनका कहना था कि सब लोग चिंपन की तरह ही कमाने वाले हैं, जब उन्हें खर्च के बाद कुछ बचत नहीं होती तब सिर्फ चिंपन ही कैसे इतना बचा सकता था। अच्छन चिंपन की उम्र का था। चिंपन के घर से सटा हुआ ही उत्तर में उसका घर था। दोनों बचपन के साथी थे। सब लोग अच्छन से सवाल करने लगे कि चिंपन कितना रुपया लेकर गया है, कहाँ से इतना रुपया आया है, नाव और जाल आएगा तब कौन कौन नई नाव में काम करेंगे इत्यादि। अच्छन को कुछ मालूम नहीं था, तब भी उसने जानकार होने का भाव प्रकट किया। चिंपन का महत्व बढ़ रहा था, तब उसके दिली दोस्त का भी महत्व बढ़ना ही चाहिए। अच्छन ने अपनी समझ के अनुसार सब सवालों का जवाब दिया और अपना महत्व प्रकट किया। कोच्चू बेलू ने एक सवाल पूछा, भाई सुनने में आया है कि तुम्हारा भी उसमें हिस्सा है, क्या यह बात ठीक है? यह सवाल अच्छन को पशुपेश में डालने वाला था, फिर भी वह चुप नहीं रहा। उसने कहा, है यह भी नहीं कह सकता और नहीं है यह भी नहीं कह सकता। अच्छन का भाव देखकर उसे बनाने के ख्याल से ही वेलू ने यह सवाल किया था। उसका जवाब सुनकर सब ठठाकर हंस पड़े। अच्छन शर्मा गया। एक होशियार आदमी ने पूछा, तुम लोग हंस क्यों रहे हो जी? अच्छन चाहे तो अपने लिए नाव और जाल नहीं खरीद सकता, फिर हिस्सेदार क्यों बने? अच्छन को अपनी झेप से ही एक जवाब सूझ गया, सब लोग नाव और जाल खरीदेंगे तो काम कौन करेगा? अपनी हंसी को रोकते हुए कोच्चू वेलू ने कहा, ठीक ही है, इसीलिए अच्छन भैया नाव और जाल नहीं खरीदता। अच्छन की समझ में अब बात आ गई कि साथी सब जानबूझकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसके बाद जब कोई उससे चिंपन की नाव और जाल के बारे में पूछता तब वह उसे खूब फटकार देता। लोग उससे तैश में आकर डांट फटकार सुनाते देखने के लिए कुछ न कुछ पूछ लिया करते। एक दिन मछुआरों की आमदनी कम हुई, अच्छन को 3 ही रुपये मिले। चाय वाले अहमद का पुराना कर्जा उस पर चला आता था। उस दिन अहमद ने उसे रोक कर अपना पैसा वसूल कर लिया। इस तरह उस दिन उसे खाली हाथ घर लौटना पड़ा। घर में उस दिन रात को खाना बनाने का उपाय न देखकर न लम्मा उसकी राह देखती बैठी थी। पति पत्नी में खूब झगड़ा हुआ। न लम्मा की शिकायत थी कि पति जो भी कमाता है सो चाय या शराब में खर्च कर देता है। अच्छन की सच्चाई पर उसे विश्वास नहीं था। शराब नहीं पी है यह प्रमाणित करने के लिए अच्छन ने पत्नी की नाक के पास जाकर अपना मुंह खोलकर सुंघाया। फिर भी नल्लम्मा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, जो कमाता है सो पूरा पीने में ही खर्च हो जाता है, तुम्हें होश हवास नहीं है, कैसे जिंदगी कटेगी? अरे आज मैंने नहीं पी है, झूठ बोलती है। आज नहीं पी तो क्या हुआ, जब कमाते हो तब पी ही लेते हो ना। घर वाली ने घर खर्च के लिए पैसा न होने के कारण शिकायत की थी, लेकिन अच्छन ने अधिकार पूर्वक डांट के साथ कहा, अरे इस तरह बेअदबी से बोलती रहेगी? बेअदबी? बचपन के साथी के पास अब अपनी नाव और जाल हो गए और तुम यहाँ खाने का खर्च भी नहीं जुटा पाते? इतना कहना बेअदबी की बात हो गई। इसका जवाब अच्छन ने बोलकर नहीं बल्कि पत्नी की पीठ पर कस कर 2 थप्पड़ लगा कर दिया। उसकी ऐसी दुर्गति हो रही थी। चैंपा ने नाव और जाल खरीदा तो उसके लिए तट पर सबों ने उसकी हंसी उड़ाई। घर पर भी उसकी बात को लेकर उसको परेशानी। अरे कोई नाव और जाल खरीदे तो उसके लिए मैं क्या करूं? कौन सा प्रायश्चित करूं? चैंपा ने पेट काट कर पैसा जमा किया है, उस तरह मुझसे ही से क्या, यहाँ किसी और से भी नहीं हो सकता। चक्की और करुत्मा अपने घर से यह झगड़ा सुन रही थी। चक्की ने पुकार कर कहा, अच्छन भाई हम लोग भूखे रहते थे तो 1 जून भी तुम्हारे यहाँ मांगने नहीं गए? अच्छन चक्की की ओर घूमा, बस बस चैंपन को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, बचपन से ही जानता हूँ। तुम क्या जानोगे, आज तुम्हारे यहाँ आग तक नहीं जलाई गई है ना, यह तुम्हारे और तुम्हारी औरत के मन की बुराई का फल है। औरत ने क्या किया है हरी? औरत के बारे में कुछ कहोगी तो? हाँ आ, नल्लम्मा ने कहा। अरे कौन सी बुराई है? अच्छन ने चक्की से पूछा। ईर्ष्या। किससे? तुम्हारे मल्लाह से? अपनी गहराई या अवज्ञा प्रकट करने के लिए अच्छन ने खखा कर थूक दिया और कहा, अरे उस घृणित आदमी से मर्दों को ईर्ष्या हो सकती है। चक्की को गुस्सा भी चढ़ा, अगर अंडरसंट बोलेगे तो? हाँ। अच्छन ने पूछा, क्या करोगी? पूछते हो क्या करूंगी? अरे 4 पैसे पास में हो गए तो इसी से इतना घमंड? झगड़ा बढ़ता देख कर करतमा घबराई। उसने माँ का मुंह अपने हाथ से बंद किया। अच्छा रुकता नहीं था, चक्की का भी दम फूल रहा था। करुत्तमा माँ को घर के भीतर खींच ले गई। जब गुस्सा जरा ठंडा हुआ तब अच्छन ने ध्यान से एक एक बात पर विचार किया। उस दिन घर में खाना नहीं बना था, इससे भी उस झगड़े ने उसे अधिक दुखी बना दिया। औरतें कभी कभी आपस में भिड़ जाती थीं, लेकिन वह खुद उस दिन तक न तो चैंपियन से झगड़ा था न चक्की से, आज वह भी हो गया, उसे रात को नींद नहीं आई। दूसरे दिन सवेरे समुद्र में जाने के पहले उसने नाव वाले से 2 रुपया उधार लेकर घर दे दिया। दोपहर को कमाई का अपना हिस्सा पूरा का पूरा लाकर नलम्मा के हाथ में देते हुए कहा कि आगे से उसने ऐसा ही करने का निश्चय किया है। अरे सुन, जो कमाऊंगा सब लाकर दे दिया करूंगा, हिफाजत से रखा करना, हम भी जरा देखें कि चार पैसा बचा सकते हैं कि नहीं। यह विचार नलम्मा को बहुत पसंद आया। उसने कहा, तब तो अगर नाव और जाल न भी ले सकें, शाम को भूखे तो नहीं रहना पड़ेगा। कौन कहता है कि नाव और जाल नहीं ले सकेंगे, यह निश्चय से कहने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि हम भी ले लें। नलम्मा को लगा कि अचन ठीक कहता है, कोशिश करने का उसका भी मन था। उसने कहा, कल तक एक समान रहने वालों को देखा नहीं, अब वे बात भी नहीं करेंगे। अच्छन को यह अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, तुम क्यों दूसरों के बारे में बोला करती हो, हमारे लिए अपना ही काम देखना काफ़ी है। नहीं, मैं तो यूं ही कह रही थी, मालूम होता है कि चक्की अब बहुत घमंडी हो गई है। अच्छन ने उपदेश दिया, तुम अपना मुंह बंद रखा करो तो बहुत अच्छा होगा, मैं कुछ भी बोलने नहीं जाती। हाँ, वही अच्छा होगा, हम भी जरा देखें। नलम्मा को एक ही पछतावा रहा कि अच्छन को ऐसा पहले क्यों नहीं सूझा। अच्छन ने हामी भरी, नलम्मा ने ठीक ही कहा था। फिर भी मानो अपनी तसल्ली के लिए अच्छन ने कहा था, अरे मल्लाह को क्यों बचा कर रखना चाहिए, उसकी संपत्ति पश्चिम में फैली हुई पड़ी है ना। बाप दादों का कहना था कि नाव और जाल घाट के सामूहिक काम के लिए हैं, लेकिन अब तो यह बात नहीं रही। कोशिश करने पर नाव और जाल कौन मल्ला नहीं रख सकता। फिर भी बचपन के साथी के पास अब नाव और जाल हो गया ना। अच्छन ने कहा, चैम्पन होशियार है, उसका यही लक्ष्य रहा है। फिर उसने हुंकारी भरते हुए कहा, देखूंगा, यह उसका निश्चय था। शाम को जाल की मरम्मत करने के लिए उसे समुद्र पर जाना था। जाल के फटे रहने से उस दिन बहुत सी मछलियाँ बाहर निकल गई थीं। जब अच्छन तट पर पहुँचा तब बाकी सब पहुँच चुके थे और काम में हाथ भी लगा चुके थे। वहाँ पर भी चैम्पन ही बातचीत का विषय था। अच्छन ने कहा, साथियों, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है, दूसरों के बारे में कुछ बोलने की क्या ज़रूरत है, नहीं तो बोलते जाओ, उसका पाप कटने दो। अच्छन ने पूछा, तुम्हें इतना दुख क्यों होता है। अच्छन ने शांत भाव से कहा, मेरा कहना गलत है। रामन मुप्पन ने न्याय की एक बात उठाई, चैम्पन के बारे में कुछ कहने का हमें अधिकार नहीं है। कैसा अधिकार, रामन मुप्पन को आश्चर्य हुआ। उसने कहा, सुनो भाई, कोई नौजवान इस तरह का सवाल करता तो समझ में आ सकता था, तुम तो एक पुराने मल्ला हो ना। अच्छन की समझ में बात नहीं आई, उसने सिर्फ दूसरों की बुराई न करने की बात कही थी, वो अच्छी ही बात तो थी। उसने पूछा, क्यों, ऐसा तुमने क्यों कहा मुप्पन। डोरा नीचे रखते हुए मुप्पन ने कहा, समुद्र तट के कुछ कायदे कानून भी हैं कि नहीं। अच्छन ने हामी भरी, क्या चैम्पन पर वे लागू नहीं होते। चैम्पन ने ठीक समझा नहीं कि किस बात को लेकर वे सब व्यंग कर रहे हैं। रामन मुप्पन ने सवाल खोल दिया, इस घाट पर पुराने जमाने में क्यों, हाल तक भी क्या बड़ी उम्र हो जाने पर लड़कियां घर में अविवाहित रहा करती थीं। अच्छन ने बात पूरी की, घाट पर उन दिनों घटवार रहता था। मुप्पन ने आगे सवाल किया, वयस्क लड़की जब घर में है तब कौन नाव और जाल खरीदने की बात सोच कर सकता है। पुराने जमाने में घटवार लड़कियों को ऐसे अविवाहित नहीं रहने देता था, घाट के नियमों का कोई भी उल्लंघन नहीं कर सकता था। घटवार इस संबंध में हमेशा सावधान रहा करता था, उन नियमों का विशेष उद्देश्य था, वे मल्लाहों के कल्याण के लिए बने थे। अच्छन ने पूछा, नियम के अनुसार किस उम्र में लड़की की शादी हो जानी चाहिए। बूढ़े मुप्पन ने कहा, 10 साल की उम्र में। बेलमड़ ली बेलायुधन ने पूछा, 10 साल की उम्र में शादी नहीं हुई तो। जानकारी के लिए यह सवाल नहीं पूछा गया था, उसकी ध्वनि में नियम के खिलाफ आवाज उठाने का भाव स्पष्ट था। रामन मुप्पन ने ही उसे जवाब दिया, पूछते हो नहीं हुई तो, ऐसा तो होने नहीं दिया जाता था। बेलायुधन ने आगे पूछा, घटवार क्या करेगा, हुक्का तंबाकू बंद कर देगा और फिर घटवार पर रहना भी नहीं हो सकेगा। एक दूसरे नौजवान पूर्णियन ने कहा, ये सब तो पुराने जमाने की बातें हैं। अच्छन ने गुस्से से कहा, नहीं रे, आज ही वैसा ही होगा, तुम देखोगे। हाँ दिखा देंगे। अब चिम्पन को परेशान होकर इधर उधर दौड़ते सीखा, दिखा देंगे। रामन मुपन ने इसका समर्थन किया और आगे पूछा, सबों को नाव और जाल रखने का अधिकार है क्या अच्छन? अच्छन ने जवाब दिया कि सबको अधिकार नहीं है। मुपन ने उस सवाल के जवाब को और भी स्पष्ट किया, समुद्र माता की संतान तो अनमोल संपत्ति की उत्तराधिकारी हैं, उनका हाथ भरा पूरा रहना साधारण सी बात है। तब सब में नाव और जाल रखने की शक्ति है ही, लेकिन घाट पर जितने भी लोग हैं, यदि वे सब नाव और जाल रखने लगेंगे तो काम पर कौन जाएगा? उसने पूछा, इस घाट पर कौन ऐसा है जो चाहे तो नाव और जाल नहीं खरीद सकता? बात तो ठीक थी, पर अच्छन ने एक भारी सवाल पेश किया, तब सबके पास नाव और जाल क्यों नहीं है? इसका भी कारण था, मछुआरे पांच जात के हैं, अरयन, जाल वाला मछुआ, मरक्कान और एक पंचम जाति। इन सब के ऊपर पूरब के वालन हैं, इनमें जाल वाले को ही नाव और जाल रखने का अधिकार है। पुराने जमाने में घटवार जाल वाले को ही नाव और जाल खरीदने की अनुमति देता था, वो अभी तब जबकि जाल वाला ना जाना देता था। बेला युधन ने पूछा, चेम्पन काका, इनमें किस जात के हैं? पुड़ियन मुस्करा दिया। मुप्पन ने जवाब दिया, मछुआरे। पुड़ियन ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चेम्पन काका की जात पात तो अब यह पूछेगा ही। अच्छन ने कारण पूछा। पुड़ियन ने कहा, उस लड़की से शादी की बात उठी है, इसी से। अच्छन ने कहा, अच्छा है, लड़की बड़ी अच्छी है। पुड़ियन को अच्छा नहीं लगा। उसने कहा, अच्छन को तो ऐसे भी चेम्पन का सब कुछ अच्छा ही लगता है। फिर उसने बेलायुधन को एक चेतावनी दी, उस कंजूस से तो तुम्हें एक दमड़ी भी नहीं मिलेगी, यह याद रखना, वह लड़की भी कम नहीं है। अच्छन को गुस्सा आया, उसने कहा, तुम क्या कह रहे हो जी? लड़की की शादी तय होती है तो उसे तोड़ना चाहिए, यही मछुआरे का काम है? अच्छन ने कहा, मैं सच्ची बात बता रहा था। आंटी ने, जो अब तक चुप था, एक सवाल पूछा और उससे बातचीत का विषय बदल गया। उसने जानना चाहा कि जाल वाले के अलावा और भी किसी व्यक्ति ने नाव और जाल खरीदा था। उसे जवाब मिला कि ऐसा हुआ है, लेकिन खरीदार उसका बहुत दिन तक उपभोग नहीं कर सका। अच्छन ने पूछा कि प्रत्येक घाट पर जाल वालों के कौन कौन परिवार हैं? इसका जवाब रामन मुपन ने दिया, चेरतला में पल्ली कुन्नम जाल वाला, आलप्पुसा में परुत्तिक कवल जाल वाला, और यहाँ कुन्नेल रामन का परिवार, यह क्रम है। पुड़ियन ने सवाल किया कि जाल खरीदने के लिए घटवार को नजराने के तौर पर क्या दिया जाता है? उसका जवाब था, तंबाकू के चार पत्ते और 15 रुपए। इसके बाद घटवार के अधिकार और हक के बारे में बातें शुरू हुई। घटवारों का अधिकार बहुत बड़ा था। उसका विरोध करने के भाव से बेलायुधन ने पूछा, अपना पैसा लगाकर जब आदमी नाव और जाल खरीदे तब भी घटवार को कुछ देनी ही चाहिए। पुड़िया ने जोड़ा, देखो देखो, यह चिम्पन काका का दामाद बन चुका है। अच्छन ने समर्थन करते हुए कहा, घटवार को नजाया नहीं देगा तो नाव और जाल आने पर ससुर दामाद दोनों मिलकर घटवार का सामना भी तो करेंगे, उस समय देखा जाएगा। यह एक चुनौती थी, चिम्पन जब नाव और जाल लाएगा तब बिना घटवार की अनुमति ये नाव कैसे समुद्र में जाएगी, यह तो देखने ही लायक होगा। अच्छन ने स्पष्ट कह दिया कि यह नहीं हो सकता। बेलायुधन ने उस चुनौती को स्वीकार करना चाहा, लेकिन किस अधिकार से करता? फिर भी उसने विरोध में कहा, तुम लोगों को ईर्ष्या हो गई है। मछुआरों को ईर्ष्या? नहीं तो और क्या है? ऐसा लगने लगा कि बातचीत एक झगड़े का रूप धारण कर लेगी। अच्छन ने बीच में पड़कर बेलायुधन को चुप कराया। थोड़ी देर तक किसी ने कुछ नहीं कहा। घाट पर जब इस तरह की अप्रत्याशित बातें हो रही थीं, तब चक्की घर में दिवास्वप्न देख रही थी। जल्दी ही वह नाव के मालिक की स्त्री कहलाएगी। जीवन की एक बड़ी इच्छा पूरी होने जा रही थी। इसके लिए पति पत्नी ने काफी परिश्रम किया था। पड़ोस की किसी भी स्त्री से वह देखने में अच्छी थी। नाव का मालिक होने के बाद करुत्तमा के लिए अभी जैसा लड़का मिल सकता था, उससे भी अच्छा लड़का मिल सकता है। माँ ने बेटी से कहा, तेरे बाप की बड़ी बड़ी अभिलाषाएं हैं, इस साल की आमदनी से जमीन और घर की व्यवस्था करेंगे, तब शादी करेंगे। करुत्तम्मा को कुछ कहना नहीं था। चक्की ने अपने आप ही आगे कहा, समुद्र माता की कृपा से किसी का कोई कर्जा नहीं है। आमदनी कम हो जाए तो भी यह तसल्ली रहेगी कि कोई तंग करने वाला नहीं है। चक्की का बोलना खत्म होने से पहले ही करुत्तम्मा ने पूछा, अम्मा तुम ही कहती हो कि कोई कर्जा नहीं है? चक्की समझ गई कि परी के रुपयों का ख्याल करके ही करुत्तम्मा ने सवाल उठाया है। वह जरा झेंप गई, फिर किसी तरह एक जवाब दिया, नहीं उसे एक कर्जे के रूप में मानने की जरूरत नहीं है। करुत्तम्मा ने जरा कड़ी आवाज में पूछा, जरूरत क्यों नहीं है? अरे नहीं नहीं ऐसा नहीं, उसे तुरंत नहीं भी चुकाएं तो भी नाव और जाल कोई हड़प नहीं सकता। ऐसा इसलिए कहती हो ना कि वह मोतलाली बड़ा सीधा साधा आदमी है? चक्की ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, इसका क्या मतलब है री? जब भी तू छोटे मोतलाली का नाम लेती है तेरी आवाज इतनी मोटी क्यों हो जाती है? करुत्तम्मा ने कुछ नहीं कहा, माँ के प्रश्न से उसमें कोई भाव परिवर्तन भी नहीं हुआ। चक्की ने आगे कहा, अपनी मर्यादा के भीतर ही रह, तभी तो कोई अच्छा लड़का मिलेगा, नहीं तो तेरा भाग्य जैसा है वैसा ही होगा। करुत्तम्मा जरा भी विचलित नहीं हुई। दृढ़ स्वर में उसने पूछा, अम्मा मुझे ही में मर्यादा की कमी है? चक्की ने सवाल किया मानो उसने सुना ही नहीं। छोटा मोतलाली तेरा कौन है रे? करुत्तम्मा ने यह नहीं कहा कि वह उसका कोई नहीं है, फिर भी उसकी आंखें भर आईं। करुत्तम्मा ने क्या गलती की थी? कुछ भी तो नहीं, यह चक्की को भी मालूम है। आज तक उसने कोई गलती नहीं की। वह एक बहुत सुशील और सहनशील लड़की है। परी का कर्जदार बनना ठीक नहीं था। उसका रुपया लौटाना देने की बात जो करुत्तम्मा करती है उसमें गलती क्या है? फिर भी करुत्तम्मा के मन में परी के प्रति प्रीति है। पहले ही शादी कराकर उसे भेज देना चाहिए था, लेकिन इसका मर्म बाप को कहाँ मालूम था। चक्की ने आगे कहा, बिटिया तेरे लिए ही तेरा बाप इतना कष्ट उठा रहा है। बिटिया मेरी तू यह सब व्यर्थ न कर। करुत्तम्मा चुप रही। चक्की ने पूछा, बेटी एक बात पूछूं? सच सच कहना, तू उस विधर्मी से प्रेम करती है? करुत्तम्मा ने जहाँ नहीं कहना चाहिए वहाँ कुछ नहीं कहा। उसके निश्चित मौन ने माँ को डरा दिया। चक्की की मानसिक शांति भंग हो गई। उसने विलाप करते हुए कहा, हे भगवान उस महापापी ने मेरी बेटी को जादू टोने से वश में कर लिया है ऐसा लगता है। चक्की का मन यहाँ तक चला गया। करुत्तम्मा ने अपने हाथ से चक्की का मुंह बंद करते हुए कहा, यह कैसा पागलपन है अम्मा? चक्की ने कातर भाव से बेटी की ओर देखा और गिड़गिड़ा कर कहा, बिटिया माँ को धोखा न देना। इतना होने पर भी करुत्तम्मा ने यह नहीं कहा कि वह परी से प्रेम नहीं करती। उस शाम को अच्चन चैम्पन के घर आया। घाट पर जो जो बातें हुई थी सब उसने चक्की को सुना दी। वहाँ लोगों ने गड़बड़ी पैदा करने का निश्चय किया है। अच्चन और मुप्पन उनमें मुख्य हैं। लौटने पर चैम्पन को सबसे पहले इस नए संकट से बचने का उपाय करना चाहिए। उसने आगे कहा, हम दोनों बचपन के साथी हैं। यह सब सुनकर मैं चुप नहीं रह सकता था। अब चक्की के मन की बची खुची शांत भी काफूर हो गई। घाट के किसी के खिलाफ हो जाने का क्या मतलब है, यह चक्की जानती थी। उसके मन में सवाल उठा, इस तरह की सजा के लिए हमने क्या कसूर किया है? क्या बेटी की शादी अभी तक नहीं की है? यही